आसमां के तारे जितने हैं अरमां हमारे उतने, चलो चलो कुछ कर दिखलाए, पंख लगे हैं अब उड़ जाए, आओ कुछ बन जाए। ऊंचाइयों को ललकारे, छूले छूले आसमां, ना तो तेज हवाओं का डर हो, अपना हो सारा जहां।
राहुल, ओ राहुल, पता नहीं ये लड़का कहाँ चला जाता है। अजी सुनते हो, राहुल को देखा है क्या आपने?
मैं सोच रही थी उसे शांता के पास भेजकर पता करवा लूं कि अन्नू की शादी के जोड़े कब तक सिल जाएंगे, पर ये लड़का दिखे तो ना।
अरे अन्नू की माँ, कभी कुछ बताकर भी जाता है तुम्हारा लाडला, मर्जी के मालिक है लाड साहब।
देखो जी, आप हर वक्त उसे डांटा मत करो, मुझे तो डर लगता है कभी कभी, इस उम्र के लड़कों को बहुत समझदारी से संभालना पड़ता है। अजी कल को गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा कर बैठे तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
अरे सविता भाभी, क्या बातें हो रही हैं?
ओ शीला दीदी, आप आ गई, जीजा जी नहीं आए?
वो कुछ काम में फंस गए हैं, पर उन्होंने वादा किया है कि शादी के 2 दिन पहले जरूर आ जाएंगे।
मामी जी, मैं भी आई हूँ, मुझे भी देख लीजिए एक बार।
हाँ हाँ नीलम, क्यों नहीं देखूंगी, इतनी सुंदर जो लग रही है। लाइए दीदी, मैं आपका सामान अंदर रख देती हूँ।
मामी जी, ये राहुल कहाँ है, दिख नहीं रहा कहीं?
पता नहीं बेटी, सुबह से ही कहीं गायब है।
ठीक है, मैं जाके ढूंढ लाती हूँ उसे, इसी बहाने गांव भी घूम लूंगी।
ठीक है नीलम, मिल जाए तो कहना घर जल्दी आ जाए, बहुत काम है।
ठीक है मामी जी।
पता नहीं क्या समझते हैं सब अपने आप को, मैं भी अब बच्चा नहीं हूँ, अपने बारे में कुछ तो सोच सकता हूँ।
तो राहुल, तुम यहाँ बैठे हो?
नीलम, तुम कब आई?
मुझे आए तो बहुत देर हो गई, पर तुम यहाँ नदी किनारे बैठे क्या बड़बड़ा रहे हो?
मैं नहीं, कुछ तो नहीं। तुम तो 1 महीने पहले आने वाली थी ना, और अब आई हो, जब अनु दीदी की शादी में सिर्फ 10 दिन बचे हैं।
वो क्या है ना राहुल, मेरी परीक्षाएं चल रही थी, कल ही तो खत्म हुई और मैं फौरन आ गई। वैसे भी 8वीं की परीक्षा दी है, पढ़ाई के लगभग 2 साल ही तो बाकी हैं।
वो क्यों?
क्योंकि सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारे घर से बहुत दूर है और वहाँ बस से आना जाना पड़ेगा, इसीलिए माँ और पिताजी मुझे 10वीं के आगे नहीं पढ़ाना चाहते।
बस से स्कूल आना जाना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए बुआ जी और फूफा जी तुम्हें आगे नहीं पढ़ाना चाहते?
नहीं, एक बात और भी है।
वो क्या?
दरअसल वो जल्द ही मेरी शादी करा देना चाहते हैं।
तुम्हारी शादी? अरे तुमसे शादी करेगा कौन? वैसे तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी शक्ल देखते ही दूल्हा भाग जाएगा।
तुम नहीं समझोगे। खैर मेरी शादी की छोड़ो, अन्नु दीदी की शादी की बात करते हैं। वो कितनी सुंदर लग रही है नहीं आजकल?
वो पहले से ही बहुत सुंदर है, मेरी बहन जो है।
पर एक बात मेरी भी समझ में नहीं आई।
कौन सी बात?
तुम्हें पता है, अन्नू दीदी ने हमारे होने वाले जीजा जी को अभी तक एक बार भी नहीं देखा।
हाँ पता है, तो क्या हुआ?
अरे पर ये क्या बात हुई, देखना तो चाहिए था ना, कम से कम इतनी आज़ादी तो मिलनी ही चाहिए। अगर अन्नू दीदी को जीजा जी पसंद नहीं आए तो?
लो, तुम लड़का पसंद करने की बात कर रही हो, यहाँ किसी को अपनी मर्जी से काम करने की आज़ादी नहीं है।
मतलब?
तुम्हें पता है ना, मैं गाँव में हर साल रामलीला में भाग लेता हूँ।
हाँ तुम हनुमान की सेना में बंदर का रोल करते हो ना?
ठीक है ज्यादा मजाक मत उड़ाओ, मगर पता है इस बार रामलीला वाले मुझे रावण का किरदार दे रहे थे।
अरे वाह, ये तो मुख्य किरदार हुआ ना?
हाँ, दशहरे से पहले पूरे 12 गांव में रामलीला दिखाने का विचार है उनका।
फिर तो बड़ा मजा आएगा।
मजा तो तब आएगा ना, जब मैं रामलीला के लिए उनके साथ जाऊँगा।
तो क्या तुम अब नहीं जा रहे?
नहीं।
पर क्यों?
क्योंकि पिताजी नहीं चाहते, उनको लगता है सिर्फ पढ़ लिख कर ही इंसान पैसे कमा सकता है। अगर मेरा मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता तो मैं क्या करूं? मैं अभिनय करना चाहता हूं, क्या अभिनय करना बुरी चीज है? क्या अभिनेता लोग पैसे नहीं कमाते? और इसके लिए गांव में रामलीला से अच्छी और क्या शुरुआत मिल सकती है?
राहुल, तुम लड़कों और हम लड़कियों की जिंदगी इतनी अलग अलग क्यों होती है? तुम पढ़ना नहीं चाहते, फिर भी तुम्हें जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता है, और मैं पढ़ना चाहती हूँ, और घर वाले शादी की बात कर रहे हैं। काश हमारे पास कुछ और विकल्प होते, कुछ अलग करने की आज़ादी, या कोई ऐसा जो हमें रास्ता दिखा सकता।
काश हम अपने माँ और पिताजी को किसी तरह समझा सकते, उन्हें कुछ करके दिखा सकते।
सपना मेरा भी सच हो जाए, दे मुझे भी कोई ऐसी सलाह,
हो बात मेरी भी सुन ले कोई, कर ले मुझ पर जरा भरोसा।
राहुल वो क्या चीज है? वो देखो नदी में।
अरे ये तो तैरकर हमारी तरफ ही आ रही है।
अरे देखो देखो कितनी पास आ गई।
तुम रुको मैं पानी से अभी लेकर आता हूँ।
अरे राहुल जरा संभल के।
ये तो बोतल है, बहुत भारी है, शायद इसके अंदर कुछ है।
मैं खोलती हूँ, लाओ मुझे दो।
क्यों, बोतल तो मैंने उठाई है।
उफ छोड़ो भी राहुल।
अरे तुम छोड़ो।
राहुल बोतल टूट जाएगी, छोड़ दो।
मैं लाया हूँ, छोड़ो।
राहुल
हेलो बच्चों।
तो तुम कौन हो?
चीनी, चीनी हूँ मैं।
पर तुम आए कहाँ से?
इस बोतल में से।
इस छोटी सी बोतल में से?
मैं कई सौ सालों से इस बोतल में बंद था, तुम दोनों ने मुझे इस बोतल से आजाद किया है, इसलिए तुम दोनों मुझसे डरो मत, मैं अब तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा।
हर इच्छा? सच कह रहे हो?
और हम तुम्हें कुछ भी करने को कह सकते हैं?
बिल्कुल।
तो क्या तुम हमें उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर पहुंचा सकते हो?
ठीक है अभी लो।
अरे अरे
अरे, अरे वाह मजा आ गया, ये तो कमाल हो गया।
उफ, थोड़ा सोच समझ के मुंह खोला करो राहुल। जीडी अब हमें नीचे उतार दो।
वाह जिनी आज तो बहुत मजा आया।
तो नीलम राहुल अब बताओ तुम तैयार हो अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए?
अरे तुम्हें हमारा नाम कैसे पता?
और तुम्हें ये कैसे पता कि हम परेशान हैं?
क्योंकि जिनी को सब मालूम होता है। तो बोलो क्या है तुम्हारी परेशानी?
जिनी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें किसी न किसी वजह से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है।
जैसे कभी किसी का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता,
तो किसी को उसके घर वाले पढ़ाना नहीं चाहते,
तो ऐसे बच्चे जिंदगी में क्या करें?
अच्छा तो ये है तुम्हारी समस्या?
सिर्फ हमारी नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही उलझन में हैं।
मुमकिन है क्या क्या नहीं कि हमें अभी पता नहीं, तो फिर पूछे चीनी से, पूछो 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 चीनी से पूछो। मुमकिन है क्या क्या नहीं ये हमें अभी पता नहीं, तो फिर पूछे चीनी से, पूछो 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 चीनी से पूछो।
मैंने 10वीं का 3 बार एग्जाम दिया फिर भी पास नहीं हो पाया, तो घर वालों ने बोला पढ़ाई छोड़कर कोई काम शुरू कर दो।
हमारे गांव में 8वीं कक्षा के बाद स्कूल ही नहीं है।
हम बहुत गरीब हैं और मेरे दो छोटे भाई बहन हैं, उनकी देखभाल करनी पड़ती है और इसके कारण मेरी पढ़ाई छूट गई।
मेरी जल्दी शादी हो गई और मेरे ससुराल वाले नहीं चाहते थे कि मैं आगे पढ़ूं।
मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई तो घर मुझे संभालना था, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया।
वाकई ये तो बहुत बच्चों की समस्या है। वैसे हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि पढ़ाई पूरी कर लो, अगर 10वीं 12वीं तक पढ़ लेते हो तो आगे का रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है, कुछ नए रास्ते खुल जाते हैं। मगर पढ़ाई पूरी ना हो तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं।
मैं कुछ समझी नहीं जीनी।
अच्छा अच्छा समझाता हूँ, मगर पहले तुम बताओ इन बच्चों ने जो कहा ऐसी परिस्थिति में तुम दोनों क्या करोगे?
यही तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें।
कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा जिनी। सपने तो देख सकते हैं, पर पूरा कैसे करें नहीं पता।
तुम लोगों के सारे सपने सच हो सकते हैं, और तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो।
सच जीनी?
हाँ बिल्कुल, पर उसके लिए तुम्हें चाहिए एक नया नजरिया।
नया नजरिया? वो क्या है?
मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, जिनसे बात करके शायद तुम्हें एक नई सोच मिले।
हो चौराहे पे मिले जब हमें पांचवी कोई राह, सोच हो नई दिन हो एक नया, हो नया अपना नजरिया।
नमस्कार टोपनो जी, अब मैं चाहूंगा कि आप मेरे सब दोस्त बच्चों को अपना परिचय दें।
नमस्ते, मैं रूफ सपनो हूं और मैं जन शिक्षण संस्थान में 20 साल से काम कर रहा था। निदेशक के रूप में पिछले साल मैं रिटायर हो गया हूं, और जो कुछ भी हमारे पास में व्यावसायिक प्रशिक्षण की जानकारी है आपको बताना चाहता हूँ।
टोपनो जी, जो बच्चे अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पाए उन बच्चों के लिए क्या क्या विकल्प हैं?
जो बच्चे पढ़ाई अपना जारी नहीं करने सके उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार ने उनके लिए ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रखी है कि वो अपने समय के मुताबिक, अपने इच्छा के मुताबिक और अपने रुचि के मुताबिक कुछ भी प्रशिक्षण ग्रहण कर सकते हैं, जिसकी अवधि कम से कम 15 या 20 दिन का होता है। जैसे कैंडल बनाना, चौक बनाना, अगरबत्ती बनाना, ये सब चीज़ें हैं जो कि आप कम समय में सीख सकते हैं। ये कोर्स उनके लिए है जो 8वीं या 8वीं तक पढ़े हुए हैं। जो बच्चे 10वीं तक पढ़ रहे हैं या तो पढ़ लिए हैं, तो उनके लिए भी अनौपचारिक दृष्टिकोण से कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, स्टेनोग्राफी, टाइपिंग, रेडियो मरम्मत करना, मोबाइल मरम्मत करना, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग वगैरह सीख सकते हैं, और इनकी अवधि तकरीबन 4 महीना से लेकर के 6 महीना तक होती है।
ये व्यावसायिक कोर्स और प्रशिक्षण होता क्या है?
व्यावसायिक प्रशिक्षण में सबसे पहले जो भी व्यवसाय हैं उसमें अपने समय के मुताबिक आप प्रशिक्षण जाने के लिए कोई संस्था में आपको जाना पड़ेगा, वो सरकारी संस्था हो चाहे तो गैर सरकारी संस्था हो, और वहाँ पर आपको सभी तरह के सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण दी जाएगी। सैद्धांतिक आपको इसलिए जानना पड़ेगा क्योंकि उसमें आपको बेसिक जो चीज़ें हैं आपको प्रशिक्षण दी जाती है, जैसे किसी को चौक बनाने का है, किसी को हाउस वायरिंग करने की रुचि है, तो उसमें आप व्यवहारिक ज्ञान और सैद्धांतिक ज्ञान दोनों हासिल कर सकते हैं और उस कला का आप अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्या हमारे देश के हर राज्य और जिले में व्यावसायिक शिक्षा के अवसर मौजूद हैं?
पूरे देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का प्रावधान है, और वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। औपचारिक दृष्टिकोण से आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो ITI है और SISI है, इसके अतिरिक्त कम्युनिटी पॉलिटेक्निक और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कार्यक्रम के तहत भी आप प्रशिक्षण ग्रहण कर सकते हैं। ये प्रशिक्षण अनौपचारिक रूप से आपको मिलती है।
अच्छा, ये बताइए, बहुत से बच्चे दूरस्थ शिक्षा से पढ़ाई करते हैं, क्या इसके लिए भी दूरस्थ शिक्षा का इस्तेमाल किया जा सकता है?
जी हाँ, डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम के जरिए भी व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है, किंतु सैद्धांतिक ज्ञान के अतिरिक्त व्यवहारिक ज्ञान को देने के लिए उतना कामयाब नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सुविधा नहीं रहती है।
मुझे ये भी जानना है कि किसी भी प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिलने की क्या संभावनाएं हैं?
प्रशिक्षण पूरा करने के बाद में आप एक जीविका का साधन चुन सकते हैं, जिसके जरिए आप अपना रोजगार खोल सकते हैं। इसी तरह से हमारे एयर कंडीशनिंग कोर्स करके एक लड़का है जो कि लाखों रुपया कमा रहा है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि कूड़ा बीनते थे और हमारे यहाँ प्रशिक्षण ले करके अपना प्रोडक्शन यूनिट खोल दिए हैं, जो कि अच्छी उनकी कमाई हो रही है।
अच्छा तो अपनो जी, आप आए और हमारे बच्चों को ढेर सारी जानकारी दी, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ।
हमसे कम उम्मीद है जिनकी, वो देखेंगे अब होकर दम, रोजगार ऐसे अपनाए कल करने अपना बुलंद।
इंद्रधनुष से सुंदर हो जो हम निखरेंगे ऐसे रंग सुर्खियों में होंगे नाम हमारे उमड़ेगी।
अरे वाह, इतने सारे विकल्प, फिर तो किसी भी बच्चे को निराश होने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी कारण वो पढ़ाई न भी कर पाए तो भी।
पर जिनी, किसी को कैसे पता चलेगा कि उसे कौन सा काम करना चाहिए?
अपनी पसंद का काम चुनना इतना मुश्किल है क्या? जिस भी काम में दिल लगे उसी में जुट जाओ।
मगर जिनी, क्या वाकई लोग ऐसे व्यवसाय करके सफल होते हैं?
क्यों नहीं, चलो एक काम करते हैं। मैं तुम्हें अभी ले चलता हूँ आरती जी के पास। वो एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन में काम करती हैं। सामुदायिक रेडियो स्टेशन एक ऐसी जगह है जहाँ समुदाय के लोग मिलकर रेडियो के कार्यक्रम बनाते हैं।
छुपी थी अब तक पहचान तुम्हारी, आज देखेंगे दुनिया सारी। अब मेरी बारी।
नमस्कार आरती, मैं तुमसे अपने दोस्तों को मिलवाने लाया हूँ। ये है नीलम और ये है राहुल, और बच्चों ये है आरती, जो हेवल वानी सामुदायिक रेडियो स्टेशन में सामुदायिक रिपोर्टर का काम करती है। तो अपने सवालों के साथ शुरू हो जाओ।
नमस्ते आरती दीदी। अच्छा, अपने प्रशिक्षण के दौरान आपने क्या क्या सीखा?
जब मैं यहाँ रेडियो में पहली बार आई तो मुझे इक्विपमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत सिखाया गया, इक्विपमेंट हैंडल करना, कैसे उस पर रिकॉर्डिंग करने। फिर मैंने यहाँ पे नरेशन रिकॉर्ड किया तो सबने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि तुम्हारी बहुत अच्छी आवाज़ है, तुम अगर थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे तो तुम बहुत अच्छे मतलब एक प्रेजेंटर बन सकते हो, ये वो उसको। फिर मैंने धीरे धीरे एडिटिंग सीखी, मिक्सिंग वगैरह करना, और आज ऑल टोटली प्रोग्राम मैं फाइनल करती हूँ, उनकी मिक्सिंग मैं करती हूँ। हालांकि यहाँ पे और लोग भी हैं करने वाले, लेकिन वो और भी काम देखते हैं इधर उधर का, और प्रेजेंटेशन और पूरा प्रोग्राम प्रोडक्शन में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है।
किस काम के लिए आपके माता पिता ने आपको कितना सहयोग दिया?
मेरे पेरेंट तो पहले से ही मेरे साथ ही देते आ रहे हैं। मतलब ये है कि मैंने जिस चीज़ को सीखने के लिए कहा उस चीज़ में मेरी हेल्प की कि चलो करो, अच्छा है। मेरी मम्मी खुद कहती है कि अच्छी बात है, तुम जितना सीखोगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखा हुआ ज़रूर काम आएगा। तो मैंने सोचा मम्मी मैं सोऊंगी कब, तो मम्मी कह रही कि काम करने वाले कभी आराम नहीं करते।
रेडियो में प्रशिक्षण लेने के बाद लोगों का आपके प्रति नज़रिया क्या कुछ बदला?
मैंने यहाँ पे अगर ज्वाइन किया है तो आज मुझे कितने लोग जानते हैं। मेरे चाचा जी लोग अपनी बेटियों को मेरा एग्जांपल देते हैं कि आरती जैसा बनो, आरती जैसा करो। मतलब बहुत सारे लोग मेरा एग्जांपल देते हैं। मैं अर्निंग से ही सिर्फ मतलब नहीं जुड़ रही हूँ, मतलब अपना अच्छा भविष्य बनाने के लिए अपने पैरों पर खड़ी हो, सबसे बड़ी बात है अपने पैरों पर खड़ा होना।
दीदी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भविष्य में किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए सही प्रशिक्षण का चुनाव कैसे करें?
यह है कि जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो उस चीज़ को सीखे, लेकिन बहुत अच्छी तरह से सीखे, उसको आगे करियर समझ के उसको अपना भविष्य देखे उसमें, तब जाके वो कुछ कर सकते हैं। अगर ऐसी मैं सोच रही हूँ, मैं यहाँ रेडियो में काम कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि चल रहा है मेरा थोड़े दिन, जब तक शादी नहीं हुई तब तक चल रहा है, थोड़ा बहुत चले उसके बाद ठीक है मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद मैंने कुछ नहीं सोचा, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। जब तक हम आगे सोचेंगे नहीं तो हम कैसे आगे करेंगे।
दीदी, गाँव की लड़कियों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगी?
हाँ, मैं भी एक गांव की लड़की हूँ, छोटा छोटा मेरे गांव का नाम है, और मैं गांव की लड़कियों से स्पेशली ये कहना चाहूँगी, कुछ ना कुछ कोर्स करके कोई भी अपना भविष्य सुधारें, अपने पैरों पे खड़े हों, ताकि लोग ये ना कहें कि सिर्फ शहर की लड़कियाँ ही अपने पैरों पे खड़ी रहती हैं, शहर की लड़कियाँ ही जॉब करती हैं। गाँव की लड़कियों में भी टैलेंट होता है, सिर्फ ये होता है कि वो उन्हें दिखाने का मौका नहीं मिल पाता। तो मैं ये चाहूँगी कि वो अपने पेरेंट्स से प्यार से मना के, जैसे भी वो मानते हैं उनसे उन्हें मना के आगे काम करें या कुछ भी कोर्स करें।
वाह, आरती दीदी ने तो सचमुच कमाल कर दिया।
तो अब विश्वास हुआ, कुछ हिम्मत बढ़ी।
हाँ जीनी, मगर मुझे अभी और बहुत कुछ जानना है।
हाँ, और मुझे भी। जीनी, अभी तो और बहुत से काम होंगे ना जिनमें प्रशिक्षण लिया जा सकता है।
हाँ, अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी भी है, पर देखो अंधेरा होने वाला है।
ओह, ये इतनी जल्दी अंधेरा भी हो गया?
बाप रे, आज तो पिताजी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे।
अरे मैं तो बुआ जी से कहकर आई थी कि तुम्हें ढूंढकर जल्दी घर ले आऊंगी, आज तो सच में खैर नहीं।
तो तुम दोनों घर वापस जाओ और मैं भी बोतल में वापस जाता हूँ।
ठीक है, तुम बोतल में घुसो और हम बोतल को अपने साथ घर लेके चलते हैं।
नहीं, मेरे बोतल में वापस जाने के बाद तुम इसे नदी में फेंक देना।
पर जिनी,
घबराओ मत, मैं कल तुम्हें फिर यहीं मिलूंगा।
पक्का? तुम कहीं गायब तो नहीं हो जाओगे ना?
नहीं दोस्तों, मैंने कहा ना, विश्वास करो। तो अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे।
अरे ये तो गायब हो गया।
मैं यहाँ हूँ।
तुम इतनी जल्दी अंदर पहुँच भी गए।
ये लो राहुल, बोतल का ढक्कन बंद करके बोतल नदी में फेंक दो।
नीलम, तुम्हें लगता है कि कल जिनी फिर मिलेगा?
ये तो कल ही पता चलेगा राहुल, पर अभी जल्दी घर चलो।
तो दोस्तों, ये दोनों तो चले गए, अब मैं मिलने आया हूँ खास आप बच्चों से। तो कैसा रहा आज का दिन? नई बातें सीखने को मिली? मैं चाहता हूँ कि नीलम और राहुल की तरह आपके सपनों को भी जानूं। तो इसके लिए सब बारी बारी से अपने सपनों के बारे में अध्यापिका जी से बात करेंगे। अब मैं चलता हूँ, अगली बार फिर मिलूंगा कुछ नई मजेदार बातों के साथ।
ये ऑडियो प्रोग्राम एजुकेशन डेवलपमेंट सेंटर के T4 प्रोजेक्ट एवं सर्व शिक्षा अभियान के सहयोग से तैयार किया गया है। इसका निर्माण यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा अमेरिकी जनता के जरिए सहभागी समझौता नंबर 386A00060014800 से संभव हुआ है। इस प्रोग्राम में प्रस्तुत रूपरेखा की जिम्मेदारी एजुकेशन डेवलपमेंट सेंटर की है तथा ये किसी भी प्रकार से USAID या US शासन की विचारधारा को प्रस्तुत नहीं करता है।